नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब कई साल से गोदी मीडिया विपक्ष को रोकने में लगा ही हुआ है, तब फिर यूपी प्रशासन क्यों विपक्ष को रोकने के लिए इतनी मेहनत करता रहा? जिस पुलिस और कानून व्यवस्था को काम करने देने के नाम पर विपक्ष को रोका गया, उसका कुछ रिकॉर्ड शुरू में बता देता हूं। बलात्कार के एक मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर कौन सी कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही थी, आप फिर से उस स्टोरी को सर्च कर लीजिए। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के संबंध में मुआवजे और नौकरी का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया है। पिछले साल उसी गोरखपुर की पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों ने सराफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना चांदी लूट लिया था। 3 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे। पिछले 1 साल से महोबा का पूर्व एसपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार है। उस पर बिजनेसमैन इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का आरोप है। इसके बाद भी गोदी मीडिया के कारण मुमकिन है कि कई लोगों को विपक्ष का इस तरह से रोका जाना गलत नहीं लगा होगा। ऐसे लोगों को अब गलत लगता ही नहीं है। आज गांधी होते और चंपारण जा रहे होते तो गोदी मीडिया के एंकर गांधी को भी आतंकवादी बता रहे होते और कह रहे होते कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आकर चंपारण राजनीतिक पर्यटन करने जा रहे हैं। किसानों के पास गांधी चलकर नहीं गए होते तो आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ आता ही नहीं। अगर वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह में किसानों के बीच नहीं गए होते तो वहां की महिला किसानों ने उन्हें सरदार नहीं कहा होता। गोदी मीडिया ने आपकी नजरों में लोकतंत्र की हत्या की प्रक्रिया पूरी कर दी है।
क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है, वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका है आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम।
आज मैं जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी?
इनमें से कोई गांधी नहीं है न सरदार है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को धक्का दिया, उसमें आपको विपक्ष का पर्यटन दिखा या प्रशासन का पतन? यह धक्का दीपेंद्र हुड्डा को नहीं, देखने वालों को दिया गया है ताकि आप समझ लें कि विपक्ष मंजूर नहीं है। ठीक इसी तरह से पिछले साल इसी वक्त हाथरस में तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन को धक्का दिया गया था। तृणमूल के सांसद हाथरस की पीड़िता के घर जाना चाहते थे, जिसके शव का अंतिम संस्कार पुलिस की सुरक्षा में रातों रात कर दिया गया था। पीड़िता के शव को उसके घर के आंगन में ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। हाथरस पहुंचने के क्रम में यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को धक्का देकर गिरा दिया था। क्या यह किसी भी तरह से राजनीतिक पर्यटन का मनोरम दृश्य कहा जा सकता है? उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका को रोकने के लिए धारा 188 लगी थी और आपदा प्रबंधन एक्ट का सहारा लिया गया था।
कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो।
उसी तरह से प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जाने लगा। पिछले साल जो हाथरस था, इस साल लखीमपुर खीरी है। पुलिस के साथ उनकी यह बहस बता रही है कि पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किस काम के लिए होने जा रहा है। कानून के नाम पर कागजी लिखा पढ़ी के बहाने किसी को भी जिंदगी भर के लिए फंसा देने वाली पुलिस विपक्ष को रोकने के लिए बिना लिखत पढ़त के आ गई। प्रियंका गांधी और बसपा महासचिव सतीश मिश्रा पुलिस से आदेश की कॉपी मांगते रहे, उन्हें कॉपी नहीं दी गई। प्रियंका गांधी पैदल चलती रही और बार बार रोकी जाती रही और अंत में सीतापुर में रोक ली गई।
दिखाओ, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती।
अभी तो अरेस्ट करो,
अरेस्ट
करो, अरेस्ट,
हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे।
हमने अगर कोई गलती करी
है, जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ, छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वॉरंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे?
महिला संबंधित महिला
का कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है।
गोदी मीडिया इस पूरी प्रक्रिया को हल्का करता रहा और आप नागरिक होने की अपनी जवाबदेही से हल्के होते रहे, एक बोगस तर्क को स्वीकार करते रहे कि विपक्ष राजनीतिक पर्यटन कर रहा है। दरअसल पर्यटन ये लोग कर रहे थे जब विदेशी सांसदों को भारी सुरक्षा के बीच श्रीनगर में घुमाया गया। कभी इसका पता कीजिएगा, किसी रहस्य से यह घटना कम नहीं। 2019 के अगस्त में श्रीनगर एयरपोर्ट से विपक्ष को दिल्ली वापस कर दिया गया। वे देसी होकर कश्मीर नहीं जा सके, ये विदेशी होकर कश्मीर घूमते रहे। जब भी आपके भीतर विपक्ष मारा जाएगा, विदेशी घूमने आएगा। कश्मीर में विपक्ष के नेता साल साल भर नजरबंद किए गए और सरकार की तरफ से झूठ बोला जाता रहा। यूपी में इस मामले में झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। सुबह सुबह अखिलेश यादव के घर के बाहर की यह तस्वीर बता रही है कि विपक्ष किसकी कृपा पर है। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है, पहली बार विपक्ष यहाँ नहीं रोका गया है, घर के बाहर यह ट्रक लगा दिया गया है। इसे देखते ही आपको यह दृश्य याद आ जाना चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर जब पिछली सर्दियों में किसानों को रोकने के लिए लगाए गए थे। कम से कम यह बड़ी बड़ी नुकीली कीले तो याद आ जानी चाहिए, या फिर कटीली तारें जिनके सहारे किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका गया। सपा नेता अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया।
अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर, इतना अन्याय इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए।
भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को भी रोका गया, लेकिन वे लखीमपुर खीरी पहुंच गए। टोल के नाके पर दौड़ते भागते जयंत चौधरी को आप पर्यटन करते नहीं देख रहे हैं, बल्कि वही करते हुए देख रहे हैं जो एक नेता को लोकतंत्र में करना ही चाहिए। जहाँ किसानों की हत्या हुई है वहाँ जाना ही चाहिए, पैदल जाना चाहिए या नंगे पांव जाना चाहिए। यह पर्यटन नहीं है बल्कि राजनीति में होने का यही मतलब
है।
आप ही कहते हैं कि राजनेता घर बैठ गए। जब वे घर से बाहर आते हैं तो घर में नजरबंद कर दिए जाते हैं, तब आप ही कहते हैं ये पर्यटन करते हैं। ये कमाल है, इसके लिए गोदी मीडिया को दीजिए धन्यवाद। आपके भीतर और देश में विपक्ष को खत्म करने की प्रक्रिया को वैधता मिल चुकी है। इस खुशी के मौके पर आप 110 रुपए लीटर पेट्रोल भराते रहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी 2:30 बजे रात रोक दिया गया।
आप एक SDM हैं, CS अधिकारी हैं, तो कारण बताएंगे। मैं एक सांसद हूँ, शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ। अपराध क्या है, किस धारा में अपराध है बता दीजिए।
सर, गेस्ट हाउस में जाना कोई अपराध नहीं है।
नहीं, गेस्ट हाउस में जाना नहीं, मैं तो जा रहा हूँ किसान जो मारे गए हैं उनमें शोक संवेदना व्यक्त करने। वो किस धारा में अपराध है इतना मुझे बता दीजिए।
अपराध बिल्कुल नहीं है
तो मुझे अरेस्ट कीजिए।
अरेस्ट नहीं करेंगे।
क्यों क्यों नहीं? आपने रास्ते में 2:30 बजे मुझे क्यों रोका हुआ है रात में, ये तो बताइए।
आपका नहीं हुआ है, शांति व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी।
शांति व्यवस्था में 1000 आदमी के साथ चल रहा हूँ क्या? कितने लोग हैं मेरे साथ? कोई हथियार लेके चल रहा हूँ? कोई सुरक्षा है हमारे पास?
आप उसका अंदर चले जाइएगा।
तो इस तरह से विपक्ष के नेता रविवार रात और सोमवार दिन भर रोके जाते रहे। वे लखनऊ से लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच सके। आज सुबह किसान एकता मोर्चा ने यह ट्वीट किया जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग इंडिया, स्लेप्ट वेल, ठीक से नींद आई, हियर इज हाउ फार्मर्स इन लखीमपुर खीरी स्पेंड द नाइट। यहां देखिए लखीमपुर खीरी के किसानों ने रात कैसे गुजारी। गार्डिंग, द स्लेन फ्रॉम बींग स्टोलन एंड हर्डली क्रिमेटेड बाय द स्टेट, मार दिए गए किसानों के शवों की रक्षा करते हुए ताकि राज्य इन्हें छीनकर इनका अंतिम संस्कार ना कर दे, हैशटैग लखीमपुर किसान नरसंहार। पहरा विपक्ष पर ही नहीं सूचनाओं पर भी लगा है। गोदी मीडिया इस पूरी घटना को किसान बनाम बीजेपी के रूप में खड़ा करने में लगा है, वो कर देगा। एक बड़े हिस्से को समझा दिया गया है कि ये लोग किसान नहीं हैं। जो ऐसा मानते हैं वे ये सवाल तक नहीं करते कि जो किसान नहीं है वो किसानों के मुद्दे के लिए क्यों 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और जान दे रहे हैं। क्या इतना आसान है? जिस दौर में विपक्ष का विपक्ष होकर कहीं पहुंचना असंभव हो, उस दौर में किसान की जगह नकली किसान बनकर कोई कैसे 10 महीने से आंदोलन कर सकता है? अगर ये किसान नहीं है तो फिर सरकार ने 22 जनवरी से पहले तक किससे बात की थी? यूपी के ही ये दोनों अखबार, अमर उजाला लिखता है कि किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी ने कुचला, संघर्ष 8 मरे। दैनिक जागरण लिखता है लखीमपुर खीरी में किसानों का उपद्रव, 8 मरे। जिन किसानों को कुचल दिया गया उनके बारे में यूपी का सबसे बड़ा अखबार उपद्रवी लिखता है। दैनिक जागरण के लिए अगर मगर कुछ नहीं, सीधा उपद्रवी। तो इस तरह से तय किया जा रहा है कि आप इस घटना को कैसे और कितना देखेंगे। गोदी मीडिया के जरिए विपक्ष और आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, जिसका फायदा उठाकर प्रशासन विपक्ष को ही नजरबंद कर देता है, इंटरनेट बंद कर देता है। किसी की भी मौत दुखद है। जिन 4 लोगों की मौत बाद में हुई उनकी भी मौत कम दुखद नहीं है, लेकिन किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना को बाद की घटना से बराबर नहीं किया जा सकता है। मारे गए 4 किसानों में से 3 32 साल, 20 साल और 24 साल के। एक किसान की उम्र 60 साल है। दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह बहराइच के हैं, जो लखीमपुर खीरी आए हैं। लवप्रीत सिंह और नक्षत्र सिंह खीरी के ही हैं। कुछ किसान घायल भी हुए। रात भर किसान किसानों के शवों के साथ जागते रहे। उन्हें लगा कि प्रशासन जबरन अंतिम संस्कार करा देगा। हाथरस में पुलिस ने इसी तरह बलात्कार की पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार आधी रात कर दिया था। किसानों की मांग थी कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत और पुलिस के बीच बातचीत भी हुई, जिसके बाद किसान अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। राकेश टिकैत और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच करने की बात कही। किसानों की एक कमेटी होगी जो प्रशासन से इस मामले में संपर्क में रहेगी। मृतक किसानों को 45 लाख मुआवजा दिया जाएगा और परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। घायलों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। किसानों ने इस जगह का धरना समाप्त किया और अंतिम संस्कार की कार्यवाही शुरू हो सकी।
रोता हुआ यहाँ पे उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे लखनऊ से आए हैं, वे इसकी घोषणा करेंगे कि एक्शन की जो पैसे सहमति बनी है वो पूर्ण रूप से गिरफ्तारी पे भी बनी है, FIR भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवारों को मिलेगी ये हुई है और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी लिखे कल FIR की कॉपी दी थी वो पूरी की पूरी उसमें दर्ज है, तो पूरी कॉपी हमारे पास है।
FIR में 15 लोगों के नाम है, इनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा का भी है। क्या उनके मंत्री रहते निष्पक्ष जांच हो सकती है? क्या पिता के मंत्री रहते बेटे के बारे में सही से जांच हो सकती है? यूपी की पुलिस केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अभय मिश्रा को गिरफ्तार कर पाएगी? यह वही जीप है जिसे किसानों ने आग लगा दी और भी गाड़ियां जली। बताया गया कि इसी जीप से किसानों को कुचला गया और इसमें मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा भी थे। उनके बेटे और मंत्री दोनों का कहना है कि आशीष जीप में नहीं थे, जीप उनका ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर की भी हत्या हो चुकी है। मिश्रा का कहना है कि इस गाड़ी में अगर उनका बेटा होता तो गुस्साए किसान उसे जिंदा नहीं छोड़ते। कार ड्राइवर चला रहा था और उन्हें बताया गया कि पत्थर चलाने के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के हलफनामे में थार जीप का जिक्र है और नंबर भी यही है।
कह रहे हैं आप स्पॉट पे थे और ऐसे वीडियोस कुछ हैं जो आप दिखाएं कि भाई आप उस टाइम स्पॉट पे थे या स्पॉट मतलब जहां ये कार्यक्रम हो रहा था
दंगल दंगल के स्थान पर था जो कि बनवीरपुर में प्राथमिक विद्यालय में दंगल का आयोजन होता मैं वहीं पर था सुबह से लेकर के दंगल के समापन तक।
ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो भी आपकी गाड़ी में थे आप नहीं हो आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन जो भी थार फॉर्च्यूनर और दूसरी गाड़ी में थे उन्होंने तेज गति से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसकी वजह से लोगों की मौतें हुई हैं।
नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मिथ्या है ये। इसमें सच्चाई ये है कि हम हमारे कार्यकर्ता वहां से गए आदरणीय डिप्टी सीएम जी को रिसीव करने के लिए तो वहां पर तिकुनिया मेरे ख्याल से तिकुनिया क्रॉस हुए थे तो वहां पर पथराव और लाठी ये उन्होंने चूंकि थार गाड़ी हमारी आगे थी तो उस पर मारा गया। उसके मारने से हमारा वहां पर एक जो ड्राइवर था हरिओम उसका नाम था उसको वो पता नहीं उसी समय खत्म हो गया कि क्या रहा भगवान जाने वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई। वो गाड़ी डिसबैलेंस होने के बाद में एक तरफ पलटी पूरी और उसमें बता रहे हैं कि जैसे मैं अपने आप को किसान कह रहे हैं उसमें कोई दो व्यक्ति चोटिल हुए या जख्मी हुए चूंकि वो लखीमपुर जनपद के भी नहीं थे
लेकिन किसान तो थे ही चाहे
नहीं किसान भाई साहब हम उनको तो किसान नहीं कहेंगे जो इस प्रकार की घटना करें।
एक सवाल है अगर जीप में सवार सभी की मौत हो गई तो मंत्री और उनके बेटे को किसने बताया कि किसानों ने पत्थरबाजी की है। उन्होंने वीडियो दिखाने की बात की थी वो वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है ना ही वो प्रत्यक्षदर्शी जिसके अनुसार किसानों ने पत्थर चलाए। गोली चलाने की घटना पर भी स्पष्टीकरण की जरूरत है किसने चलाई चलाई भी या नहीं। अब हम आपको दो वीडियो दिखाना चाहते हैं बहुत छोटा वीडियो है जिसे ठीक से समझ पाना आसान नहीं टीवी के लिए तो हम इसे रोक रोक कर दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे उस वक्त के हालात के बारे में कुछ अंदाजा हो सके। इस वीडियो में तेजी से कारों का काफिला गुजरता है और आप बाद की दो सफेद कारों को देख पाते हैं जो काली जीप है आगे बहुत तेजी से निकल चुकी है। यह भी देख रहे हैं कि सड़क के किनारे किसान खड़े हैं और कारें गुजर रही हैं। यह पता नहीं चलता कि कार ने किसानों को टक्कर मारी है या नहीं लेकिन कुछ हुआ है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए काले रंग की एक जीप दिखाई देती है जो थार हो सकती है उसके गुजरने के बाद काले रंग की एक और बड़ी गाड़ी दिख रही है। किसान सड़क के किनारे जरूर खड़े हैं लेकिन इन दो वीडियो में हिंसक नहीं लग रहे हैं कार का रास्ता नहीं रोक रहे हैं काले झंडे जरूर दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया से मिले इन दो वीडियो से ही सारी बातें स्थापित नहीं हो सकती हैं और यह जांच का विषय भी है। यूट्यूब पर गांव सवेरा नाम से चैनल चलाने वाले स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया ने एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की। इस व्यक्ति ने कहा है कि मंत्री के बेटे थार जीप में सवार थे घटना के बाद जीप से वे उतरे और पुलिस उन्हें सुरक्षित रास्तों से लेकर निकल गई।
3:40 लगभग हो गए थे तो उम्मीद खत्म हो गई थी भी मंत्री अब आएंगे तो अंदर से जब संयुक्त मोर्चे ने कॉल के भी आप लोग जहां से चलें घर के लिए तो एक्चुअल जो मतलब कि मेन लीडर आने थे वो जिस साइड से आने थे लोग उधर के लिए वापसी घर के लिए चले गए तो इधर नेपाल बॉर्डर पड़ता है उधर के लिए तो कोई जाए नहीं जहां पर मुख्यमंत्री जी ने जाना था तो जब लोग जाने लगे भीड़ बिल्कुल रोड पे आ गई तो उसी समय हमारे जो मेन लीडर थे तेजिंदर विर्क उनके ऊपर पर्सनली अटैक करने के लिए जो उनकी प्लानिंग थी जब वो बाहर निकले तो उनके ऊपर बताया गया पीछे से बैक साइड से नेपाल बॉर्डर की तरफ से फॉर्च्यूनर और थार लगभग 40 से 50 की स्पीड में आई और पीछे सभी पुलिस डीएम एसपी सब उस साइड में थे किसी ने कोई नहीं रोका बैरिकेड लगी थी हटा दी गई गाड़ियां फुल स्पीड से आई लोगों की पीठ थी पीछे से जब वो गाड़ियां आई और लोगों के ऊपर चढ़ती गई कुचलती गई लोगों को पता नहीं लगा भी अचानक ये हो क्या गया है। जहां पर आकर बस खड़ी थी सरकारी और बैरिकेड लगा था जहां पर बस उनकी गाड़ियां रुक गई गाड़ियां से उतरने के बाद पर्सनली जहां पर 50 से 60 पुलिस वाले खड़े थे जब वो मंत्री जी का बेटा उतरा उन्होंने उनको कवर किया और इस तरफ गन्ने की तरफ ले गए और जब लोग पीछे भागे तो उन्होंने आगे से फायरिंग और आंसू गैस के गोले चलाए।
तो अब इसकी भी जांच जरूरी है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा वहां थे या नहीं थे। मंत्री अजय मिश्रा ने एक बयान जारी किया है उसमें भी वही बातें दोहराई गई हैं कि किसान तलवार अब तलवार जुड़ गया है पत्थर और डंडों से लैस थे। उन्होंने तलवार और डंडे से हमला कर दिया और ड्राइवर हरिओम मिश्रा, बीजेपी के मंडल मंत्री श्याम सुंदर, बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा की हत्या कर दी। क्या यह पुलिस और मंत्री की थ्योरी है? अगर तलवारों से हत्या हो रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी? मंत्री के लिखित बयान में किसानों के बारे में एक शब्द नहीं है। शुभम के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा दंगल में भाग लेने गया था, उसे तेजेंद्र सिंह विर्क और अन्य लोगों ने तलवार और लाठी से मारा है। इस राजनीति में कितने ही लोगों की मौत हो गई, नेता आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिनके यहां मौत हुई है वो उम्र भर सिसकते रहेंगे। शुभम की हत्या का आरोप जिस तेजेंद्र सिंह विर्क पर लगाया गया है, ट्रिब्यून की संवाददाता सुमेधा शर्मा ने ट्वीट किया है कि तेजेंद्र सिंह विर्क को चोट आई है, गंभीर चोटें आई हैं, डॉक्टरों ने रुद्रपुर से मेदांता अस्पताल में भर्ती के लिए कहा है। हमारे सहयोगी कमाल खान ने घायल किसानों से बात की।
हमारे साथ यहाँ सोनी जी हैं, जो लखीमपुर खीरी के ही पलिया इलाके के किसान हैं। वो यहाँ पे आए थे काले झंडे दिखाने के लिए। इनका कहना है कि इनके पैर के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई है, ये इन्होंने यहाँ पे प्लास्टर लगाया हुआ, ये उसके चश्मदीद गवाह हैं। क्या हुआ था थोड़ा बताइए।
सांसद जी के लड़के इधर से तिकुनिया की साइड से गाड़ी भगाते हुए, गुंडों से भरी हुई गाड़ियाँ लेके आए और भगाते 120 की स्पीड से भगाते हुए लेके आए, फिर ऊपर हम लोगों के ऊपर रौंदती हुई चली गई। हमारे साथ तेजेंद्र विर्क जी भी थे, जो अध्यक्ष हैं हमारे उत्तराखंड के, वो भी थे, उनको भी कुचल दिया, उनके भी सरों में चेटे आई, और भी हमारे किसान है, चार से पांच किसान शहीद हो गए इसमें।
तो फिर क्या हुआ थोड़ा बताइए। चीफ पुकार मच गए, वो भाग गए क्या?
हाँ भाग गए, सांसद जी के लड़के फायरिंग करते हुए भाग गए।
कमाल खान ने किसान मनदीप सिंह से भी बात की, उनके किसान पिता की मौत हो गई। मनदीप भारतीय सेना में काम करते हैं।
नहीं नहीं, मैं तो ड्यूटी पर था अपने SSB में, अल्मोड़ा में। उसके बाद शाम को हमें खबर मिली, फिर हम रात को वहाँ से निकले हैं, सुबह यहाँ पहुँचे।
तो जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ?
यही बताया कि गाड़ी उधर से काफी स्पीड में आई और ये टैनी के लड़के थे, उनको चलते हुए निकल गई।
तो ये हादसा था या जानबूझ के कुचला गया है, इसलिए कि क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे
हैं? आप जब इतनी भीड़ होगी तो इतनी स्पीड में कौन गाड़ी लेकर आएगा।
25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने संपूर्णा नगर की जनसभा में बोल दिया, आप भी ध्यान से सुनिए, कि सुधर जाओ नहीं तो सामना करो आकर, हम सुधार देंगे। मैं सिर्फ सांसद और विधायक नहीं हूं, इससे पहले मैं क्या था यह भी जान लें, लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। क्या प्रधानमंत्री को मंत्री बनाते समय यह पता था कि इससे पहले ये क्या थे? वैसे लोकतंत्र की मां मदर, भारत में किसी मंत्री का यह बयान काफी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा वो बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन मंत्री जी पहले क्या रहे होंगे, मैं यही सोच रहा हूं। इसका अंदाजा मंत्री जी के इस वायरल वीडियो से हो जाता है। इसमें वे कार का शीशा नीचा कर किसानों को ठेंगा दिखा रहे हैं, थम्स डाउन कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। सड़क की दूसरी तरफ किसान उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं। क्या लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर, भारत के किसी मंत्री को ऐसा करना शोभनीय है? नहीं है तो इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए।
ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल।
पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है कि किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचलने की जो घटना हुई है उससे सारे देश में पीड़ा और रोष है। किसान हमारे नागरिक हैं, उनके साथ संयम पूर्वक बर्ताव होना चाहिए। बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस भाषण को उकसाऊ बताया है। कहा है कि जिस कार्यक्रम में यह भाषण दिया गया उसमें मंत्री को काले झंडे दिखाए गए थे, बाद में काला झंडा दिखाने वाले किसानों के यहां छापे पड़े और केस हुआ। क्या यह तनाव पैदा करना नहीं है? काला झंडा दिखाना कौन सा बड़ा अपराध है कि इस पर छापे पड़ेंगे और मुकदमे किए जाएंगे?
देखिए, 25 सितंबर को राज्यमंत्री मिश्रा जी के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए जाते, उसके बाद किसानों का आंदोलन चल ही रहा सब जगह। जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए उन लोगों के घरों पे छापे पड़े, पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किए। उसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का वहां पे प्रोग्राम तय हो जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि डिप्टी सीएम को हेलीपैड छोड़ने के बजाय बाई रोड आना पड़ता है। LIU की रिपोर्ट है कि उन्होंने इस बात की चेतावनी पहले दे दी थी लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं की गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले 10 दिन से यानी कि 25 तारीख से लेकर के 5 और 3 8 दिन तक जिला प्रशासन LIU आपकी CID क्या करते रहे और उन लोगों पर पहले से मुकदमे दर्ज थे जिसमें इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा दिए गए वक्तव्य जिसमें यह कहना राजमंत्री का कि पलिया नहीं लखीमपुर खीरी तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये किसी संभ्रांत राजनेता की भाषा नहीं।
अच्छी बात है कि किसी ने गलत को गलत कहा, लेकिन केसी त्यागी को पता होना चाहिए कि मोदी मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं जिनका गोली मारने के नारे लगाते हुए का वीडियो सामने आया था। मंत्री जी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो गए। यही नहीं, घटना के बाद मंत्री अजय मिश्रा ने बयान दिया है कि इलाके में किसानों के बीच बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अगर ऐसा है तो फिर यूपी सरकार ने मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान क्यों किया? क्या सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि ये बब्बर खालसा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं?
निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है।
10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कई बार किसानों को उकसाया गया लेकिन उन्होंने शांति का रास्ता नहीं छोड़ा। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद भी पुलिस की बातचीत के बाद किसान जल्दी मान गए और शांति को रास्ता दे दिया, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर आतंकवाद का भूत खड़ा करने का यह अभियान थम नहीं रहा। 1 महीना पहले करनाल के तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा अपने सिपाहियों को निर्देश दे रहे थे कि किसानों का सर फोड़ दें। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक वीडियो आया है, वे BJP के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अपना संगठन बनाना है और किसानों पर कैसे लाठी चलानी है।
और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे, क्या अर्थ होता है इसका, जैसे को तैसा खा लो ठंडे हैं, ठीक है।
मुख्यमंत्री ही अपने संगठन के लोगों को डंडे चलाने की सीख दे रहे हैं। अगर इस तरह का वीडियो किसी किसान का मिल गया होता तो गोदी मीडिया क्या हाल करता किसानों का। इस एक वीडियो के आधार पर भारत की जनता को ही किसानों के खिलाफ भड़का देता। किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर, भारत के एक मुख्यमंत्री का यह बयान लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर, भारत के बेटों को सुनने में ठीक तो नहीं लगना चाहिए। ये लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर, भारत के एक पत्रकार का सवाल है। इस घटना में एक पत्रकार की भी मौत हो गई है। 35 साल के रमन कश्यप किसानों का प्रदर्शन कवर कर रहे थे। रमन कश्यप साधना न्यूज के लिए काम करते थे। कमाल खान ने उनके पिता राम दुलारे जी से बात की है।
तो उधर से भी काफिला आ रहा था और इधर से भी आ रहा था, उसी बीच में वो थे। तो उसमें सर जो पत्रकारों का काम होता है वो इसीलिए, मतलब वो भी उनका काम था तो वहीं गए थे रिपोर्टिंग के लिए। उसमें फिर मतलब जो है पता लगा कि वो कहीं मिल नहीं रही है उस डेड बॉडी। रात में सुबह मेरे पास फोन 3 बजे आया कि एक लड़का मतलब यहाँ लखीमपुर में आया है, उसको कोई पहचान नहीं रहा है। हम लोग जब गए तब देखा, हमने कहा तो मेरे बेटा है।
कितनी उम्र थी रमन जी की?
35 साल थी।
तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब
हम तो अब ये चाहते हैं कि मतलब जो है, अब एक पोती मेरी है, एक बेटी है और एक बेटा है रमन के, और बहू है, तो अब कम से कम मतलब जो है मुआवजे के लिए 50 लाख रुपए चाहिए परिवार को, और उस मेरी बहू को सर्विस मिलनी चाहिए, सरकारी सर्विस मिलनी चाहिए।
कानून व्यवस्था के नाम पर छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। मुख्यमंत्री होते हुए भी दोनों यूपी नहीं जा सके। पिछले साल इसी वक्त हाथरस की बलात्कार पीड़िता से मिलने को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। 3 अक्टूबर के दिन प्रियंका गांधी किसी तरह से पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर सकी थी। ठीक एक साल बाद वे इस कमरे में बंद हैं और सफाई कर रही हैं। उनके सहयोगी ने ही यह वीडियो बनाया होगा। विपक्ष की राजनीति पर्यटन कही जाएगी, लेकिन राजनीति की यही प्रक्रिया है। जब नेता विपक्ष का महत्व समझते हैं और सत्ता की तासीर और उसकी सीमा भी, विपक्ष ही झुकने की विनम्रता देता है और झाड़ू उठाने का साहस। अगर विपक्ष की यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाएंगे। प्रियंका गांधी भले ही किसानों तक नहीं पहुंच पाई, विपक्ष के नेताओं को इस बार भी रोका गया। सब पूछते रहे कि रोकने का कारण बताइए, गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन जवाब नहीं मिला।
जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए जो जिम्मेदार लोग सत्ता में बैठे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी नियत में खोट है। किसानों के हितों के खिलाफ ये लोग कानून बनाते हैं। देश में आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। ये तीनों कृषि कानूनों को हम वापस करा के मानेंगे, लेकिन जिन लोगों की शहादत हुई है, जो लोग मारे गए हैं किसान निर्दोष, उनके जो कार्रवाई करनी है सरकार को, वो मैं समझता हूँ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज कोई करेगा। समय सीमा निर्धारित होगी, तब उनको न्याय मिलेगा।
संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अफसरवादी है और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है।
मूल बात यह है कि किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्हें लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हों, इस तरह के बयान अभी तक क्यों दिए जा रहे हैं? क्या यह सत्ता का पर्यटन है या सत्ता का अहंकार है? किसी को देश से ही निकालने की बात हो रही है तो किसी को लखीमपुर खीरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। पूरे देश को नेताजी का मोहल्ला बना दिया गया है। आप ब्रेक ले लीजिए। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए हैं। बेंगलुरु से लेकर ग्रेटर नोएडा तक, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी
कानून पंजाब लागू नहीं होने देंगे।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।